नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और न्यूजीलैंड ने ऐतिहासिक महत्वाकांक्षी और दोनों देशों के लिए लाभकारी मुक्त व्यापार समझौता एफटी वार्ता को सफलतापूर्वक संपन्न किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने आज इसकी घोषणा की। श्री मोदी ने आज टेलीफोन पर श्री लक्सन से बातचीत की। श्री लक्सन की इस वर्ष मार्च में भारत यात्रा के दौरान वार्ता शुरू की गई थी। दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि 9 महीने के रिकॉर्ड समय में एफटीए का संपन्न होना दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की साझा महत्वाकांक्षा और राजनीतिक इच्छा शक्ति को दर्शाता है। एफटीए से दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध मजबूत होंगे, बाजार पहुंच बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ होगा। इस सहयोग से दोनों देशों के नव प्रवर्तकों, उद्यमियों, किसानों, लघु और मध्यम उद्यमों, छात्रों तथा युवाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसर सृजित होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के शीतकालीन सत्र में पारित सतत परमाणु ऊर्जा उपयोग और विकास भारत रूपांतरण विधेयक 2025 शांति विधेयक को स्वीकृति दे दी है। इस विधेयक में नागरिक परमाणु क्षेत्र से जुड़े सभी कानूनों को समाहित किया गया है, साथ ही इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का भी प्रावधान है। विधेयक के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और नागरिक परमाणु क्षति दायित्व अधिनियम 2010 को निरस्त कर दिया गया है, जिन्हें भारत में नागरिक परमाणु क्षेत्र के विकास में बाधक माना जा रहा था। राष्ट्रपति ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण जी रामजी विधेयक 2025 को भी मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की गई है। सरकार ने कहा है कि अरावली पर्वतमाला की पारिस्थितिकी को तत्काल कोई खतरा नहीं है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा कि अरावली पर्वतमाला देश के लिए प्राकृतिक धरोहर और पारिस्थितिकी कवच है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार अरावली क्षेत्र का 90% हिस्सा संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इस संबंध में कोई छूट नहीं दी गई है।
अरावली की पिटीशन 1985 से चल रही है। इस पिटीशन में चलने के बाद अरावली में माइनिंग के स्ट्रिक्ट नियम होने चाहिए, इसके हम भी पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। कुछ YouTube चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ होगा टॉप के 100 मीटर। ऐसा नहीं है। जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहां से लेकर 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है।
पश्चिम बंगाल में शेख शाहजहां मामले में प्रमुख गवाह भोलानाथ घोष की हत्या के प्रयास में मुख्य संदिग्ध अलीम मुल्ला को पुलिस ने कल रात गिरफ्तार कर लिया। उसे आज बशीरहाट अदालत में पेश किया जाएगा। 10 दिसंबर को उत्तरी 24 परगना जिले में ट्रक की टक्कर में भोलानाथ घोष गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसमें उनके छोटे बेटे और कार चालक की मौत हो गई थी। भोलानाथ संदेश खाली के पूर्व तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां की हत्या के मामले में प्रमुख गवाह हैं। वे इस मामले में गवाही देने के लिए बशीरहाट अदालत जा रहे थे। मुंबई जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट A1887 तकनीकी खराबी के कारण उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद दिल्ली हवाई अड्डे पर लौट आई। पायलट ने फ्लाइट में तकनीकी खराबी की सूचना दी। इसके बाद फ्लाइट की मानक परिचालन प्रक्रिया के अनुसार आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। एयर इंडिया के प्रवक्ता के अनुसार विमान सुरक्षित उतर गया। विमान की फिलहाल जांच चल रही है। इस बीच नागर विमानन मंत्रालय ने इस उड़ान से संबंधित घटना पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मंत्रालय ने नागर विमानन महानिदेशालय को इस मामले की गहन जांच का निर्देश भी दिया है। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज घने कोहरे के कारण कई उड़ानें और रेलगाड़ियां बाधित हुईं। दिल्ली हवाई अड्डे ने बताया कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कम दृश्यता के कारण लगभग 10 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। रेलवे के दिल्ली मंडल ने बताया कि लगभग 17 ट्रेनें 3 घंटे से अधिक विलंबित हुई। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, बिहार और उत्तर प्रदेश में शीतलहर का अनुमान लगाया है। विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में कल तक रात और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।